ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली में मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया तेज हुई। 28 नवंबर 2024 के बाद 4,80,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पुजारियों और ग्रंथियों के लिए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ट्रॉमा सेंटर में 200 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा केंद्र की स्थापना करेगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का गणतंत्र दिवस शिविर नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में सर्वधर्म पूजा के साथ शुरू हुआ। और राष्ट्रीय राजधानी में नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। अब समाचार विस्तार से। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार 28 नवंबर 2024 के बाद नए पंजीकरण के लिए 4,80,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
दिल्ली के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में संशोधन और नए नाम जोड़ने का काम जारी है। दिल्ली के मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए इच्छुक नागरिक 6 जनवरी तक फॉर्म 6 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही किसी भी तरह का संशोधन करने के लिए या मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और फॉर्म 8 का उपयोग कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नागरिक अपने मतदाता पहचान पत्र के विवरण को सत्यापित करने के लिए निर्वाचन आयोग के पोर्टल या हेल्पलाइन का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रक्रिया बुधवार तक पूरी की जाएगी और 6 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षत वैद्यान के साथ भानु प्रताप सिंह।
भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर मतदाता सूची से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्वाचन क्षेत्र में 61,000 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में 1,46,000 लोगों के नाम मतदाता सूची में थे, लेकिन अब इसमें कटौती कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों की ग्रंथियों के लिए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की है। श्री केजरीवाल ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतती है तो मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रूपये प्रतिमाह की सम्मान राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये योजना पुजारियों और ग्रंथियों के आध्यात्मिक योगदान और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के प्रयासों का सम्मान है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि कल से कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर से इस योजना का पंजीकरण शुरू होगा।
पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। आज इस योजना के जरिए हम इसे, मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपए महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर।
वहीं दिल्ली के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी की इस योजना को चुनावी हथकंडा बताया है। उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में केवल योजनाओं की घोषणा की है। श्री खंडेलवाल ने कहा कि केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है।
देखिए, अरविंद केजरीवाल घोषणाओं के मास्टर हैं और इस प्रकार की घोषणा केवल मात्र चुनावी स्टंट से अधिक कुछ नहीं है। घोषणा उसकी प्रभावी मानी जाती है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा हो कि वो घोषणा भी करे और घोषणा को कार्यान्वित भी करे। अरविंद केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10 वर्ष का केवल मात्र घोषणाओं का है और जो भी उन्होंने कहा उसको किया नहीं।
भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेम शुक्ला ने इस योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पिछले 10 वर्षों से मौलानाओं को इसी तरह का लाभ दे रही है। उन्होंने पुजारियों को पहले से ऐसा लाभ न देने के लिए आम आदमी पार्टी की आलोचना की। श्री शुक्ला ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल आगामी चुनाव हारने के डर से ये वादे कर रहे हैं।
अब तक क्यों नहीं दिया? मौलानाओं को तो वो 10 साल से दे रहे हैं, पुजारियों की सुध अब क्यों आई, चुनाव के समय क्यों आई? और केजरीवाल जो है वो झूठ का पुलिंदा परोसते, अभी कुछ दिन पहले ही किस तरह से स्वयं उनकी सरकार ने आम आदमी पार्टी द्वारा भराए जा रहे फॉर्म के फर्जीवाड़े को बेनकाब किया है। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने की स्थिति प्रकट हुई है, उसको देखकर अब जो है दपोर शंखों की तरह घुस आएगा।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी पर पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा करके दिल्ली के लोगों की धार्मिक सहानुभूति लेकर वोट बटोरने का आरोप लगाया। श्री यादव ने कहा कि अरविंद केजरीवाल बेरोजगारी और महंगाई पर चुप रहकर दिल्ली में हर दिन नई घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की घोषणा और वादे कभी पूरे नहीं होंगे। दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों ने आज वेतन जारी करने में देरी को लेकर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय इमाम संघ के अध्यक्ष मोहम्मद साजिद रशीदी ने कहा कि पिछले 17 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि वे लगातार सरकार के कई अधिकारियों और नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
17 महीने हो गए और एक दिन के बाद 18 महीने हो जाएंगे। हमारी तनख्वाह नहीं मिली है और हम पिछले 6 महीने से बराबर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिले हैं, एलजी से मिले हैं, छोटे बड़े जितने भी अफसर हैं उन तमाम लोगों से मिलकर हम परेशान होकर यहाँ आए हैं, ताकि अरविंद केजरीवाल से भी पूछें कि भाई आपकी पार्टी, आपकी सरकार हमें सैलरी क्यों नहीं दे रही है। अगर अब भी ये लोग मुलाकात नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, तो हम बैठ जाएंगे यहाँ धरने पर।
इस बीच पंजाब से आए 180 शिक्षकों ने आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि उनकी वेतनमान के मामले में उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आज महिलाओं के लिए बसों के न रोकने की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए ड्राइवर और कंडक्टर पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। श्रीमती आतिशी ने कहा कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से महिलाओं की शिकायतें आ रही थीं कि डीटीसी की बसें अक्सर महिलाओं को देखकर नहीं रोकी जाती हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई भी महिलाओं के लिए बस न रुकता हुआ पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी और ड्राइवर कंडक्टर को निलंबित कर दिया जाएगा।
ये आदेश निकलवाया है डीटीसी के क्लस्टर के सभी बसेस को कि अगर कोई भी महिलाओं के लिए बस ना रोकता हुआ पाया गया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ड्राइवर को भी सस्पेंड किया जाएगा, कंडक्टर को भी सस्पेंड किया जाएगा। अगर कहीं भी आप ऐसा देखते हैं कि बसेस को नहीं रोका जा रहा, आप उसकी फोटो लीजिए और सोशल मीडिया पर डालिए। जो भी बस का नंबर है, जो भी बस का ड्राइवर है, जो भी बस का कंडक्टर है, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री आतिशी को अस्थायी मुख्यमंत्री कहने को लेकर आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने इस विषय पर श्रीमती आतिशी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा मीडिया में श्रीमती आतिशी को सार्वजनिक रूप से अस्थायी मुख्यमंत्री घोषित करना अपमानजनक था। उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल द्वारा घोषित महिला सम्मान योजना को रेखांकित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इस तरह की घोषणाएं करने से मुख्यमंत्री के पद की गरिमा धूमिल हुई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आज उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्माण और अन्य श्रमिकों, पीएम विश्वकर्मा तथा पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों, ऑटो चालकों, महिला SC/ST श्रेणियों, भूतपूर्व सैनिकों, वीरता पुरस्कार विजेताओं और दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न स्थानों पर विशेष आवास योजना को स्वीकृति दी। इस योजना के अंतर्गत नरेला, सिरसपुर और लोकनायकपुरम में 25% की छूट पर फ्लैट उपलब्ध होंगे। इस दौरान श्री सक्सेना ने कहा कि ये योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो दूसरों के लिए घर बनाते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अपने ट्रॉमा सेंटर में गहन चिकित्सा केंद्र स्थापित करेगा। नई दिल्ली में आज संस्थान के निदेशक एम श्रीनिवास ने बताया कि 200 बिस्तरों वाला ये केंद्र गंभीर स्थिति वाले उन रोगियों का उपचार करेगा जिन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के लिए बजट आवंटित कर दिया गया है और अगले 2 वर्ष में ये काम करना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि गहन चिकित्सा केंद्र खुल जाने से आपातकालीन विभाग का बोझ कम होगा, जहां 700 से 800 रोगी प्रतिदिन पहुंचते हैं। निदेशक ने बताया कि एम्स रेफरल और टेली कंसल्टेशन सेवाएं शुरू करने पर भी काम किया जा रहा है। इससे रोगियों को देश भर में किसी भी एम्स या राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों से चिकित्सा सलाह लेने की सुविधा मिलेगी। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में सर्वधर्म पूजा के साथ शुरू हो गया। एक महीने तक चलने वाले शिविर में सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 2361 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। 917 बालिका कैडेटों के साथ इस वर्ष के शिविर में सबसे अधिक बालिका कैडेट भाग लेंगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 114 कैडेट और पूर्वोत्तर क्षेत्र से 178 कैडेट शामिल हैं। शिविर में मित्र देशों के 14 कैडेट और अधिकारी भाग ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस शिविर का मूल उद्देश्य भाग लेने वाले कैडेटों में देशभक्ति, अनुशासन और नेतृत्व गुणों की गहरी भावना पैदा करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में छठी बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट पर परामर्श के सिलसिले में आयोजित इस बैठक में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में वित्त सचिव, आर्थिक कार्य मंत्रालय सचिव, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार तथा स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट अगले वर्ष 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लगातार 8वीं बार ये बजट पेश करेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। पंजाब में किसानों को एक दिन के बंद का पूरा समर्थन मिला है। किसानों ने अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग करते हुए बंद का आह्वान किया था। किसान यूनियन द्वारा पंजाब बंद के मद्देनजर रेलवे ने 150 रेलगाड़ियां रद्द कर दी। यूनियन ने आज सवेरे 7 बजे से शाम 4 बजे तक बंद का आह्वान किया था। रद्द की गई रेलगाड़ियों में दिल्ली और पंजाब के बीच चलने वाली शताब्दी और वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शामिल हैं। उत्तर रेलवे के अनुसार 13 रेलगाड़ियों के समय में भी परिवर्तन किया गया है। फिरोजपुर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय ने हमारे संवाददाता को बताया कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को देरी और रद्दीकरण के बारे में लगातार सूचित किया जा रहा है। पंजाब में बिहार और पंजाब पुलिस के संयुक्त दलों ने बचपन बचाओ आंदोलन नामक एक गैर सरकारी संगठन के सदस्यों के साथ मिलकर 30 बंधुआ मजदूरों को बचाया है। इनमें 3 नाबालिग लड़कियां और 7 महिलाएं शामिल हैं। पीड़ितों को कपूरथला स्थित एक खेत में कम वेतन पर लंबे समय तक बंधुआ मजदूरी करने के लिए बाध्य किया गया था। ठेकेदार ने कथित तौर पर उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। पीड़ितों को बंधक बनाने वाले 2 ठेकेदार अभी फरार हैं। राजधानी में नववर्ष से पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले समारोह को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
नववर्ष की पूर्व संध्या पर विशेष रूप से बाजारों, मॉल, 5-स्टार होटलों, रेस्तरां, शराब की दुकानों के आसपास दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे। प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों और अत्याधुनिक तकनीक से लैस वाहन तैनात किए जाएंगे। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर अंकुश लगाने और सड़क पर हुड़दंग को रोकने के लिए पुलिस और यातायात पुलिस कड़ी नजर रखेगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से महिला पुलिसकर्मी तैनात की जाएंगी। नववर्ष की पूर्व संध्या पर यातायात को सुगम बनाने के लिए भी पूरे शहर में इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान क्लॉट प्लेस और इसके आसपास के इलाकों में रात 8 बजे से नववर्ष के जश्न तक यातायात पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे आपदा से निपटने की प्रभावी तैयारियां विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन मौजूद रहेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 8 बजे से हिंदी में 30 मिनट का एक विशेष कार्यक्रम वर्षांत 2024 प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल 100.1 और अन्य मीटरों पर सुना जा सकेगा। शीतलहर के चलते दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस कम 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया तेज हुई। 28 नवंबर 2024 के बाद 4,80,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ट्रॉमा सेंटर में 200 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा केंद्र की स्थापना करेगा और राष्ट्रीय राजधानी में नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।